तो अभी हम सुनेंगे प्रवीणा बहन से कर्मों की गति के बारे में, साथ साथ अनुभव भी।
ओम शांति। इस स्थान पर पहली बार कौन आए हैं? मैं जो रीति है, कुछ दिन से आप लोग ज्ञान सुन रहे हैं और आज कर्म के बारे में मैं प्रकाश डालूंगी, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है, आत्मा शरीर के अंदर आई है, तब से हम कर्म करना चालू किया है, है ना? ऐसे कोई कहते हैं कि हम कर्म सन्यासी बन जाए, क्या बन सकते हैं? क्योंकि सोचना भी एक कर्म है, है ना? श्वासोश्वास की क्रिया करना भी एक कर्म है। तो कोई भी आत्मा कर्म का सन्यास नहीं कर सकती है। तो जब हम इस संसार के अंदर आए हैं, हम अपने कर्मों के हिसाब के आधार से, क्यों मुझे वो ही माँ बाप मिले, क्यों मुझे वो ही परिवार मिला, कोई ना कोई कारण तो है ही, है ना? कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन पर्टिकुलर ये इस जन्म में मुझे वो ही माँ बाप क्यों मिले, वो ही परिवार मिला, वो ही गांव मिला, क्योंकि हमारा कर्म का हिसाब किताब आत्माओं से अनेक जन्मों से जुड़ा हुआ है। और कर्म की खेती कहते हैं कि कर्म की खेती करो, तो कर्म की खेती माना क्या कहेंगे? जैसे हम धरती में बीज बोते हैं, तो बीज बोने से पहले धरती को तैयार करना पड़ता है। यदि हमने धरती को तैयार नहीं किया तो बीज फलीभूत नहीं होगा, है ना? और बीज बोने के बाद हम क्या करते हैं? उसको ढक देते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं। अगर नहीं ढकते हैं तो क्या होता है? चिड़िया खा जाएगी, धूप में जल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम उसको ढक देते हैं। कर्म भी ऐसा है। कोई कहता है कि मैंने कर्म किया है, किसी ने देखा तो नहीं। हम छिप करके कर्म करते हैं और हमेशा पाप कर्म जब हम करते हैं तो छिप करके करते हैं, गलत कार्य करते हैं तो हम कभी वर्णन नहीं करते हैं, छिप करके करते हैं। ओके, कर्म हमने छिप करके किया, लेकिन देखा किसने? पहले तो खुद ने, खुद से हम छिपा सकते हैं। हमारी अंतरात्मा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है, बार बार हमें वो स्मृति दिलाता रहता है कि तुमने ये गलत काम किया। और दूसरा गवाह परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा देखता है। ये हम हरेक कहते हैं ना, फिर भी हम छिप करके कर्म क्यों करते हैं, जबकि परमात्मा तो देख ही रहा है। ठीक है, हमने छिप करके कर्म किया, लेकिन वो कर्म जब फलीभूत होगा, फल निकलेगा। जब हमने बीज बोया तो बीज को छिपाया, चाहे रात में बीज बोया हो, धरती में छिपा दिया, लेकिन जब फलीभूत होगा तो वो छिप सकता है, सब देखेंगे। हमारे कर्म भी ऐसे हैं कि हमने चाहे छिप करके कर्म किया, लेकिन जब रिजल्ट निकलेगी, सबको दिखाई पड़ेगा। तब हम सोचते हैं कि हमने ऐसा तो कोई काम किया नहीं था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों अन्याय किया? कहते हैं ना ऐसे, तो हम कहीं न कहीं भगवान को जिम्मेवार समझते हैं हमारे कर्म के पीछे। तो क्या परमात्मा दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, हम कहते हैं भगवान की मर्जी से हो रहा है? है ऐसा? अगर कोई भी कर्म भगवान की मर्जी से यदि होता तो अच्छे से अच्छा होता, श्रेष्ठ होता, सकारात्मक होता। लेकिन जब दूसरी ओर हम कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, कहते हैं ना ऐसा, तो हम जैसा करते हैं वैसा ही रिजल्ट हमें मिलता है। जो बीज हम बोते हैं वही फल हम पाते हैं। कांटों का बीज बोकर के हमें आम मिलेगी? हाँ, मिल सकती है, क्योंकि बोया ही कांटों का बीज है। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बात है कि एक लोकमान हकीम था बहुत प्राचीन जमाने के अंदर, और वो हकीम पहले के जमाने के अंदर गुलामी में गुलामी से लोगों को खरीद लेते थे, क्योंकि गरीबी होती थी और शोषण वर्ग था। तो लोकमान को भी खरीद लिया था एक साहूकार ने, और वो मालिक उसका बहुत शोषण करता था, उसका अत्याचार करता था उसके ऊपर, और उसके साथ जो भी रहता था सबके साथ वो अत्याचार करता था, हिंसा करता था, शोषण करता था। एक दिन लोकमान को संकल्प आया कि रहम आता था कि ये मालिक अगर बदल जाए तो उसका जन्म सुधर जाए। लेकिन जब हमारे संस्कार में नहीं होता है तो हम बदल भी नहीं सकते हैं। फिर भी एक दिन मालिक ने कहा कि लोकमान अभी बी बोने का समय है, गेहूं का बीज बोना है, और आप नौकरों को लेकर के जाइए खेत में और गेहूं का बीज बो दीजिए। वो नौकरों को लेकर के खेत में जाता है और बीज बोता है, और जब वापस आता है तो नौकरों से मालिक पूछता है कि आपने गेहूं के बीज डाल दिए खेत में? तो नौकर कहते हैं हमने गेहूं के बीज तो नहीं डाले। तो कहते कौन से बीज डाले? तो उसने कहा हमने जौ के बीज डाले। कहते सच? मैंने तो गेहूं के बीज उगाने के लिए कहा था। तो फिर कहा कि नहीं, लोकमान ने हमें जो आज्ञा की हमने तो फॉलो किया, क्योंकि हम वही कर सकते हैं जो उसने हमें कहा। फिर लोकमान से पूछा, उसने कहा कि मालिक हमने बोया तो जौ के बीज है, लेकिन जब फसल निकलेगी तो गेहूं की निकलेगी। कहते तुम किसको कह रहा है? तुम मुझे मूर्ख बना रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर बाद में लोकमान कहता है कि मालिक आप रोज इतना अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, हिंसा करते हैं, और आप सोचते हैं कि आपके कर्म से आप स्वर्ग में जाएंगे। अगर आपके ऐसे कर्म से आप स्वर्ग में जा सकते हैं तो मेरे जौ के बीज क्या गेहूं नहीं उगा सकता है? तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और उसको लेसन मिला कि ये कहता क्या है, कि मेरे ऐसे कर्म क्या मुझे स्वर्ग में ले जाएगा? नहीं ना। फिर उसके जीवन में परिवर्तन आता है और मालिक अपने को परिवर्तन कर देता है। तो इसीलिए जैसी करनी वैसी भरनी जब हम कहते हैं, जो बीज बोया है वो ही फल हमें मिलेगा। हमने सुख के बीज बोए हैं तो सुख मिलेगा, हमने दुख के बीज बोए हैं तो मुझे दुख मिलेगा। कर्म का सिद्धांत क्या है? आप बॉल फेंकोगे, वापस आपके पास ही आएगा, है ना? कोई ना कोई रीति से आपके पास आएगा। जैसे हम बीज बोते हैं खेत के अंदर, कोई बीज होता है जो एक का एक फल ही देता है, लेकिन कोई बीज होता है जो एक का अनेक गुना फल देता है, और कोई बीज होता है जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट आपको देता है, 3 महीने के अंदर आपको फल की प्राप्ति हो जाती है, और कोई फल बीज होता है जो सालों साल आपको फल देता रहता है। जैसे कैबेज का बीज बोया, एक कैबेज मिलेगी आपको, है ना? फूलगोभी का बीज बोया, फूलगोभी एक ही मिलेगी। हमारे कर्म भी कुछ ऐसे ही हैं कि कोई कर्म का फल हमें एक ही बार मिलता है, लेकिन कोई कर्म का फल हमें एक का अनेक गुना होकर के भी मिलता है, और कोई बार बार मिलता है। तो जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं ना, कहीं पर भी जाते हैं कि हमारी सेफ्टी क्या है। क्या हम कर्म करने से पहले अपनी सेफ्टी को सोचते हैं कि ये जो कर्म मैं करने जा रहा हूं, इस कर्म से मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है? हम ऐसे ही सोच लेते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। सोचना बोलना भी एक कर्म है। रामायण में एक बात आती है कि जब यज्ञ करना था, सीता तो वन में थी, राम को यज्ञ करना था, तो उसके गुरु ने कहा कि हमें एक पत्नी चाहिएगी यज्ञ को संपन्न करने के लिए। तो राम दुविधा में पड़ गए। सीता को इधर किसी ने सुनाया कि राम दूसरी शादी करने वाले हैं, क्योंकि यज्ञ रचने वाले हैं तो यज्ञ की आहुति डालने के लिए धर्मपत्नी चाहिए। तो सीता को ख्याल आया कि मैं पतिव्रता हूं, क्या एक पति पत्नी व्रता नहीं बन सकता है? उसके बाद राम ने क्या किया कि मैं दूसरी शादी तो कभी नहीं करूंगा, लेकिन एक सोने की मूर्ति सीता की बनाई और फिर संपूर्ण आहुति डाली। फिर बाद में जब सीता जी को पता चला कि राम ने शादी नहीं किया और सोने की सीता बनाई, उसको बहुत आत्मग्लानि हुई कि मैंने क्या सोच लिया कि राम मतलब एक पति पत्नी व्रता नहीं हो सकता है। उसको आत्मग्लानि हुई, वो अपने गुरु के पास गई और गुरु को कहा कि मैंने जो ये सोचा है उसके लिए मुझे प्रायश्चित करना है, क्योंकि ये सोच कहीं आगे चल करके मेरे परिवार के अंदर ना आ जाए। कितनी ऊंची भावनाएं उस समय थी कि सोच के ऊपर भी इतना अटेंशन, क्योंकि सोचना भी एक कर्म है, क्योंकि सोचना एक बीज है। कोई भी कर्म करने से पहले मन के अंदर एक विचार जरूर आता है, उसके बाद हम कर्म करते हैं। तो बीज बोना, संकल्प आया और वो संकल्प को फिर बार बार याद करते हैं, माना हम पानी देते हैं। आप सोचो उस समय इतना ध्यान रखा जाता था कि मेरे सोच का मेरे परिवार के ऊपर असर न पड़े, क्या आज हमारा इतना अटेंशन है? है? तो आप यहां से ये लेकर के जाओ कि मेरे सोच का मेरे परिवार के ऊपर भी, क्योंकि सोच से वाइब्रेशन बनती है और वो वाइब्रेशन कहां रहती है? हमारे आसपास ही रहती है। जैसे कोई व्यक्ति ने गुस्सा किया और कोई घर के अंदर आता है, उसने तो गुस्सा नहीं देखा है लेकिन वाइब्रेशन तो कैच कर सकता है ना, कि यहां कुछ अच्छा नहीं है, कुछ माहौल ठीक नहीं है। हम किसी के घर जाते हैं, ऐसा हैवी एटमॉस्फेयर देखते हैं तो वहां ज्यादा समय नहीं बिताते हैं, है ना? तो हमारे सोच का असर हमारे आसपास वालों को ऊपर पड़ता है। तो सोच के ऊपर भी अटेंशन, क्योंकि विचारों से भी हम पाप कर लेते हैं। विचार के बाद आता है वाणी। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि वाणी मतलब बोलने से भी हम कर्म करते हैं, और अगर मैंने मेरे बोल से किसी को डिस्टर्ब कर दिया, मेरे बोल से मैंने उसकी आंखों में आंसू ला दिया, दुख दे दिया, तो उसको क्या कहेंगे? कौन सा बीज मैंने बोया बोल से? कौन सा बीज बोया? और कर्म तो वापस मेरे पास आएगा ही, कभी ना कभी तो आएगा, क्योंकि मैंने बीज बोया है, रिजल्ट तो मुझे मिलेगी। हम कहते हैं कि हमने इसको डिस्टर्ब थोड़ी ही किया, हमने तो बस बात कही, लेकिन बोलने का जो तरीका था वो कैसा था? हम कहते हमने चोरी नहीं की, लेकिन अगर हमने आवाज से बातें की, आसपास में लोग सो रहे हैं और हम जोर जोर से फोन पर बातें कर रहे हैं, तो क्या हमने उसकी नींद की चोरी नहीं की? कोई तपस्या में बैठा है, कोई भगवान में ध्यान लगा रहा है, हम जोर से टीवी चला रहे हैं, तो उसकी शांति को हमने भंग नहीं किया, उसकी शांति की हमने चोरी नहीं की। तो इसीलिए हमें कोई भी कर्म करने से पहले चेक करना है कि ये जो कर्म मैं करने जा रही हूं उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, और मेरा हिसाब किताब तो बनेगा ना। मैंने किसी को गुस्सा किया तो गुस्सा करने के बाद क्या मुझे शांति मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। फिर हम नेचुरली गुस्सा कर लेते, क्योंकि एक संस्कार में आ गया है ये बातें, और वो कर्म कभी न कभी मेरे पास वापस आएगा। कोई व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर आता है, किसी के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होती है और किसी के साथ कोई ना कोई छोटी छोटी बातों से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो हम डिस्टर्ब कर देते हैं या तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। माना किसी के साथ तो कोई छोटी सी बात भी कहेगा तो हम उसके साथ प्यार हैं, क्योंकि हमने प्यार का बीज बोया है कोई आत्मा के साथ, तो उसकी बात का हमें माइंड नहीं होता है। लेकिन किसी के साथ घृणा के बीज बोए हैं, नफरत के बीज बोए हैं, उसकी अच्छी बात भी हमें कड़वी लगेगी, क्योंकि उसके साथ हमारा संबंध कौन सा है। तो इस जन्म में नहीं, कोई ना कोई जन्म में उस आत्मा के साथ हमारा कर्म का हिसाब किताब बना था। इसीलिए वो आत्मा इस समय या तो चुप्तू कर रही है या तो लेने वाला चुप्तू कर रहा है। देना और लेना तो चलता ही रहता है ना सारा समय। लेकिन हमें क्या लेना है? समझो कोई व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, क्या दुख अच्छी चीज है जो मैं ले लेती हूं? अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है, किसी ने गुस्सा किया और मैंने ले लिया, मुझे उसने गुस्सा क्यों किया, मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या गलती थी जो उसने मुझे सबके बीच में डांट दिया। फिर यहां तक सीमित नहीं रहता है, हम बार बार याद करते हैं। हम बीज बोते हैं ना, फिर पानी देते हैं, याद करना मना पानी देना। या तो हम वर्णन करते हैं कि देखा फलाने ने मुझे ऐसा कहा, मेरा कोई दोष नहीं था लेकिन मुझे ऐसे ऐसे गुस्सा किया। बार बार उसको दोहराते रहते हैं और वो बीज, कौन सा बीज बोया है, अपसेट होने का, दुखी होने का। और आपके गार्डन में आप गुलाब का प्लांट डालो और वीट्स जो उग जाते हैं थोड़े दिन में, वो घास निकाली और वापस चार पांच दिन में दिखने लग जाती है। गुलाब के फूल को उगाने में मेहनत है, वीट्स को उगाने में मेहनत नहीं है। तो मैंने जो नेगेटिव बीज बोया है, दुखी होने का, अपसेट होने का, वो बीज फटाफट दिखाई देता है, फलीभूत हो जाता है। अभी दुख मैंने कहां लिया, क्योंकि दुख कोई स्थूल चीज नहीं है जो दिखाई पड़ती है। मैं आपको ये गुलदस्ता उठा करके दूं तो वो तो दिखाई पड़ता है ना, किसी ने मुझे गुस्सा किया वो दिखाई पड़ा। कहां लिया मैंने, कहां लिया, मन में, विचारों के अंदर, और बार बार उसको सोच सोच करके दुखी होते रहते हैं, है ना। अब मेरे हाथ में है मुझे लेना है या नहीं लेना है। कोई आपको कोई गिफ्ट देता है, वो गिफ्ट आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप लेंगे? अच्छा दे दिया लेकिन आपके काम की नहीं है तो आप यूज करेंगे है? नहीं करेंगे ना। कोई ने दुख दिया मेरे काम का नहीं है तो हम नहीं लेंगे। और एक बात जीवन में पक्की कर लो कि कोई व्यक्ति हमें क्या देता है, जिसके पास वो चीज होती है वो ही हमें देता है ना। आप सब्जी मंडी में जाओ और सब्जी बेचने वाले को कहो कि भैया मेरे को फूल दे दो ना, वो क्या कहेगा कि बहन मेरे पास तो फूल नहीं है, मेरे पास सब्जियां हैं, आप सब्जियां ले जाओ, फूल चाहिए तो फूल वाले के पास जाओ। कोई व्यक्ति अपसेट है, दुखी है, वो हमें दुखी दुख दे रहा है, अपसेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके पास वही चीज है जो आपको दे रहा है। आप उनसे सुख की अपेक्षा क्यों करो? मिलता है फिर? किसी के पास है ही नहीं तो वो देगा क्या? मेरी जेब में 100 रुपया है और आप कहो बिन 500 रुपया दे दो ना, मैं क्या कहूंगी कि भाई मेरे पास तो 100 रुपया ही है, 500 नहीं है, है ही नहीं, तो देंगे क्या? इसीलिए कोई मेरे पास क्या है जो मैं दूसरों को देती हूं? मेरे पास यदि सुख है तो मैं दूसरों को सुख देंगी ना। मेरे पास अच्छे विचार है तो मैं अच्छे विचार किसी को देंगी ना। मेरे पास शांति है तो मैं दूसरों को शांति देंगी ना। तो उनसे और क्या अपेक्षा रखेंगे? एक बार गौतम बुद्ध रोज सुबह में वॉकिंग करने जाते थे और एक माता उसके ऊपर रोज कीचड़ा फेंकती थी, तो उसके शिष्य को गुस्सा आता था। गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोलते थे। कहते हैं कि आप उसको बोलते क्यों नहीं हो? गौतम बुद्ध ने कहा कि चलो मैं माता को बुलाता हूं। एक दिन माता को बुलाया, वो समय उसका ध्यान का समय था। माता वो टाइम पर तो आ गई, लेकिन उसने समझा कि इसका ध्यान 5-10 मिनट के बाद खुल जाएगा, उसने जब बुलाया ही है तो। लेकिन गौतम बुद्ध तो ध्यान में चले गए, तो माता की धीरज खूट गई। फिर उसने गालियां देना शुरू किया। जब सामने से कोई जवाब नहीं मिलता है तो क्या होता है? बोलने वाला थोड़ा चुप तो हो ही जाएगा ना। झगड़ा बढ़ता कब है? जब उसको प्रत्युत्तर मिलता है ना। एक शांत रहेगा तो झगड़ा शांत हो जाएगा। फिर गौतम बुद्ध ने आंखें खोली और बहुत नम्रता से, प्यार से, अच्छा माता जी आप आ गई। उसको और गुस्सा आया कि मैंने जो इतना समय उसको गुस्सा किया, क्या उसने सुना ही नहीं? तो बहुत प्यार से फिर भी गौतम बुद्ध उसको कहने लगे कि माता जी मैं आपको कुछ दूं और आप उसको स्वीकार नहीं करो तो किसके पास रहेगा? तो माता ने कहा कि आपके पास ही रहेगी। फिर माता को रियलाइज हुआ कि इतना गुस्सा जो मैंने किया उसने तो लिया ही नहीं, तो किसके पास रहा? खुद के पास ही रहा ना। तो कोई भी हमारे जीवन के अंदर कोई गुस्सा करता है तो उसको न मन में न चित्त में लेने का। इसीलिए कहते भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं? सुनो और निकाल दो, नहीं तो सुनो ही नहीं। क्यों सुनो? बहरे हो जाओ उस समय। अंदर जाए ही नहीं ऐसी बातें। अच्छी बातें सुनो और ग्रहण करो, लेकिन नेगेटिव बातें सुनी अनसुनी करो, नहीं तो हमारा हिसाब किताब बन रहा है कर्म का। किसी ने दिया मैंने ले लिया, मना मेरा कर्म का अकाउंट्स बना। इसीलिए हमारी वाणी के ऊपर भी हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है। इसलिए कहते हैं बोलो तोल के बोलो, ऐसे बोल बोलो जिसके जीवन में उसके आत्मा की उन्नति हो जाए। उसको सुकून मिल जाए आपके बोल से, नहीं कि हम बोल करके किसी की नींद को हराम कर दे, लेकिन वो वापस मेरे पास आएगा ही, आज नहीं तो कल। क्योंकि कोई बीज होता है, बोया है कहां और उगेगा कहां पता चलता है। हरि के नाया वो बीज उड़ करके चला गया, कहीं ना कहीं तो उगेगा। कौन से बीज बोने हैं वो ध्यान हमेशा रखना है। कांटों का बीज बोएंगे तो सबसे पहले मुझे ही लगेगा कांटा, दूसरे को तो बाद में लगेगा। कर्म का हिसाब किताब तो कैसे कैसे हम चुकते करते हैं। बहुत अच्छी एक कहानी आई थी न्यूज़पेपर में कभी, कि दो मित्र थे गांव में, और वो दो मित्र उन्होंने सोचा कि हम परदेश जाकर के कुछ कमा करके आते हैं। दोनों मित्र गए परदेश में, उस समय तो जहाज में जाया जाता था। जहाज में गए, अच्छा धन कमाया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अभी बहुत समय से हम यहां हैं, गांव जाते हैं। तो गांव जाने के लिए जहाज में वापस आ रहे थे। अब दो मित्र में से एक को ख्याल आया कि मैं इसको मार डालूं, क्योंकि गांव में तो किसको पता ही नहीं है कि हम आ रहे हैं। क्योंकि उस समय ऐसा कोई ईमेल का या व्हाट्सएप का जमाना नहीं था। तो दोनों आ रहे थे जहाज में, एक की मति बिगड़ी कि इसको मैं मार डालूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा। फिर जब उसको वो किनारे पर ले गया बोट जहाज के अंदर, और उसको धक्का मार करके दरिया में फेंक दिया। जहाज जब वापस अपने गांव आया, माना अपने गांव में जब वो आया तो पूछा कि भाई हमारा लड़का कहां गया, हमारा भाई कहां गया। तो उसने कहा कि हम दोनों ने बिधंधा जो शुरू किया था उसमें मैंने अच्छी तरक्की की थी, उसने नहीं किया था। तो उसको थोड़ा आत्मग्लानी हो रही थी, तो उसने फिर रास्ते में दरिया से जंप लगा करके आत्महत्या कर ली। अभी सच कहानी तो किसी और को पता नहीं है। उस भाई की शादी हुई, शादी हुई उसके बाद उसके घर में एक बच्चा आया। वो बच्चे की जब जन्म कुंडली निकाली तो उसने कहा कि इसको ना गरीब की तरह रखना। अभी वो बाप सोचे कि मेरे पास इतनी जहो जलाली है, मैं क्यों उसको गरीब की तरह रखूं? तो उसने सब प्रकार की उसकी डिमांडें पूरी करता रहा, अच्छी तरह से उसको इतना लाड प्यार मिला, परवरिश करता रहा। और एक दिन वो 20-22 साल का हुआ, बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो बहुत डॉक्टरों की दवाई किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसकी शादी भी तय कर दी थी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। मरने की टाइम पर उस बच्चे को अपना पास्ट जन्म याद आता है, और वो हंसता है अपने बाप को देख करके इस जन्म का। कहता है, आपने मेरे को पहचाना? कहता है, नहीं। कहता है, मैं तुम्हारा पिछले जन्म का वो मित्र, आपने मेरे साथ जो किया था आज वो मेरा लेन देन पूरा हो गया, मैं जाता हूं। अपने हिस्से का उसके पीछे ही खर्च हुआ। तो कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, किसी से भी हमने उधार लिया और हमने उसको चुकाया नहीं, क्योंकि हमारा एड्रेस बदल गया है तो एड्रेस भी बदल गई, लेकिन वो व्यक्ति कैसे न कैसे रीति से हमारे से ले लेगा, क्योंकि हम उसके कर्जदार हैं तो हमें चुकाना ही पड़ेगा किसी न किसी रीति से। तो कर्म बहुत बलवान है, लेकिन क्या कर्म में परमात्मा इंटरफियर करता है? हमारे कर्म में किया मैंने कर्म भगवान माफ करता है? हमारी मान्यताएं क्या है? हाँ, सारा साल पाप कर्म करेंगे और कहेंगे चलो अभी दान पुण्य श्रावण मास आता है, दान पुण्य कर दो, पाप थोड़ा माइनस हो जाएगा। होता है ऐसा? नहीं होता है। गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं, सचमुच नहीं धुलते हैं। हमारा किया हुआ हमें ही कैसे न कैसे कर्म चुकते करना है। एक बच्चा था, रोज किसी न किसी को तंग करके घर में आता था। तो जिस दिन वो तंग करके घर में आता था, उसका बाप उसको कहता था कि बेटा तुम जब भी किसी को डिस्टर्ब करके आता है ना, तो एक कील दीवार में लगा दो। वो बच्चा सोचता है कील क्यों दीवार में लगवाता है पापा। एक दिन ऐसा आया कि सारी दीवार भर गई। फिर उसके पिता ने कहा कि अब क्या करो, रोज एक अच्छा कर्म करो और एक कील निकालो। रोज एक अच्छा कर्म करके वो एक कील निकालता था। एक समय आया, सारी कील निकल गई, लेकिन जो छेद पड़ा हुआ था दीवार के ऊपर वो तो नहीं गया। हम बुरा कर्म करके अगर हम दान पुण्य करते हैं और समझते हैं कि हमारा बुरा कर्म का हाँ थोड़ी इम्पैक्ट कम हो जाएगी, लेकिन जो बुरे कर्म का जो निशान रह जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो होता है। जैसे सफेद कपड़ा है, सारा सफेद कपड़ा, लेकिन एक छोटा सा दाग होगा, सबकी नजर कहां जाएगी? सारा कपड़ा वाइट है वो नहीं दिखेगा, लेकिन एक छोटे से दाग पर नजर जाएगी। तो हम जो अच्छे कर्म करते हैं वो लोगों को नोट डाउन नहीं होते हैं, लेकिन एक गलत कर्म किया उसकी इम्पैक्ट सारे समाज में रहती है। और सबसे पहले तो हमारी अंतरात्मा हमें टटोलती रहती है कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। फिर क्या होता है, हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, क्योंकि सबके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस मुझे मिल रहे हैं, जो गलत कर्म किया है समाज के अंदर आ गया है, तो सबके जो वाइब्रेशंस मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? नेगेटिव मिलेगा। और वो नेगेटिव वाइब्रेशंस मुझे जीने में मदद करेगा? मुझे और डिस्टर्ब करता रहेगा। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। अभी अच्छे कर्म किसको कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म किसको कहते हैं? श्रेष्ठ कर्म किसको कहते हैं? क्या कहेंगे? हाँ बोलो। किसी का दिल नहीं दुखे वो तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे श्रेष्ठ कर्म दूसरे का भला हो और भगवान की याद में करे और कर्म करने के बाद खुद को अच्छा लगे। त्रिकालदर्शी स्थिति में रह करके कर्म करे, ये ज्ञान की बात है कि कर्म करने से पहले उसके रिजल्ट को सोचे। उसको कहते हैं तीनों कालों को देख करके कर्म करना। वो कर्म करे, एक कर्म का जो अनेक गुणा फल मिलता है, एक बीज का अनेक गुणा फल मिलता है। एक दादा बहुत बुजुर्ग हो गया और उसने सोचा कि मुझे आम का बीज बोना है। तो एक भाई ने कहा कि दादा आप तो इतने बुजुर्ग हो गए हैं, आम का बीज बोने से क्या फायदा, आप तो खाने के लिए रुकेंगे नहीं। कहते हैं मेरे पौत्रे तो खाएंगे। तो वो कर्म उसका श्रेष्ठ कर्म है। दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म, जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आजकल क्या होता है कि मैं कुछ करती हूं, मेरा नाम हो, मुझे मान मिले, मेरा माना दिखावे वाला कर्म है। हम भक्ति में क्या कहते हैं, दान भी करो एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता भी न चले। लेकिन आजकल ये कॉन्सेप्ट रहा है, हाँ रहा है। आप कोई भी धार्मिक संस्था में जाकर के दान करते हैं तो अनाउंस करते हैं नाम कि फलाने व्यक्ति ने इतना दान किया, तो दूसरे को प्रेरणा आती है। दान करने के बाद बहन ने कहा सोशल मीडिया में, ताकि बहुतों को पता चले कि मैंने दान किया। अगर मैंने वर्णन किया तो आधा हो जाएगा। हमने कुछ अच्छा कार्य किया भी, लेकिन मैंने वर्णन किया आधा हो जाएगा। मैंने कोई अच्छा कर्म किया और मैंने महिमा स्वीकार कर ली तो उसका फल मुझे यहां ही मिल गया। या तो मेरी इच्छा है कि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया तो सबको पता चलना चाहिए, सब मेरी वाह वाह करें, तो इसका मतलब क्या, कच्चा फल खा लिया, फल पका ही नहीं है और मैंने स्वीकार कर लिया। अभी कच्चे फल अच्छे लगते हैं, कच्चा केला खाओ अच्छा लगेगा, कच्ची आम खट्टा लगेगा ना, मीठा तो नहीं लगेगा। तो फल पकने से पहले ही मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने अच्छा कर्म किया, समय पर उसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। लेकिन मेरी धीरज की परीक्षा है यहां, इसीलिए कहावत है नेकी कर दरिया में डाल। एक हाथ से करो दूसरों को पता भी ना चले, ऐसे कर्म होने चाहिए। नहीं कि आजकल हॉस्पिटलों में आप देखो दान किया और मेरी नेम प्लेट वहां लग गई तो वो कुछ जमा हुआ नहीं, जमा हुआ तो वर्णन करने से आधा खत्म हो जाता है। और हम क्या चाहते हैं, फुल रिवॉर्ड मिले मुझे, जो मैंने किया है उसका फुल प्राइज मिले। वो तब मिलेगा जब हम निस्वार्थ भाव से करेंगे। जैसे श्रेष्ठ कर्म की बात मैं कहती हूं, कोविड के टाइम पर आप सोचो नर्सिस और डॉक्टर्स ने अपनी जान की बाजी लगा करके कर्म किया, वो कौन सा कर्म था, श्रेष्ठ कर्म है ना। हालांकि उनको भी जोखिम तो था ना, उनको भी कोविड लग सकता था, हुआ भी होगा कईयों के साथ, लेकिन फिर भी। तो ऐसे हम जब कर्म करते हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कोई प्राप्ति की महिमा की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जब कहते हैं कर्म किए जा फल ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो इंसानों से अपेक्षा रखते हैं, इंसानों से हम प्राप्ति चाहते हैं, तो ऊपर वाला तो छूट ही जाएगा ना, कहते अच्छा है मेरा काम इन्होंने कर लिया, मुझे देना नहीं पड़ेगा, है ना ऐसा। इसीलिए कर्म की खेती करनी है, बीज बोना है, सोच समझ करके बीज बोना है, प्रेम का बीज बो, खुशी के बीज बो, आनंद के बीज बो। अगर मैंने नफरत के, ईर्ष्या के, घृणा के बीज बोए हैं तो उसका फल मुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो परमात्मा हमें रास्ता दिखाता है, राह दिखाता है, चलना मेरा काम है। परमात्मा कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, कर्म मुझे करना है। जैसे आपके घरों में माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं घर के अंदर, लेकिन एग्जाम तो बच्चों को ही देनी पड़ेगी, और रिजल्ट भी आएगा तो बच्चे का ही आएगा। माँ बाप एग्जाम देने जाएंगे? नहीं। परमात्मा भी मेरा पिता है, वो मुझे राह दिखाएगा, कर्म का ज्ञान देगा, लेकिन कर्म तो मुझे ही करना है। तो आज के बाद कौन सी सिक्योरिटी रखेंगे? कर्म के ऊपर सिक्योरिटी, कि कौन से कर्म, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो मेरे हाथ में है ना। कोई जबरदस्ती मुझे देखने के लिए फोर्स करेगा? जबरदस्ती कोई मुझे सुनाएगा? लेकिन यदि मुझे इंटरेस्ट होगा नेगेटिव बातें सुनने का, तो वो जरूर सुनाएगा ना हमें। इसीलिए हमारे हाथ में है कि मुझे क्या करना है। तो जैसी करनी वैसी भरनी मेरे हाथ में है। परमात्मा ने वर्तमान समय में हमें कलम अपने हाथों में दे दी है, और इस कलम से आप जितनी लंबी रेखा खींचना चाहो आपके भाग्य की, आप खींच सकते हो। और वो कलम है श्रेष्ठ कर्म की कलम। आप जितने श्रेष्ठ कर्म करना चाहो कर सकते हैं, चाहे आपके हाथ में है पतली रेखा खींचो या मोटी रेखा खींचो, आपके हाथ में है। मेरे बदले आप कर्म करेंगे? मेरे बदले आप सोचेंगे? नहीं ना, मुझे ही कर्म करना है। तो मैं कितना श्रेष्ठ सोच सकती हूँ, श्रेष्ठ बोल सकती हूँ, श्रेष्ठ कर्म के खाते में मैं जमा कर सकती हूँ। तो अपने भाग्य की रेखा हम स्वयं हैं और कोई नहीं है। हम अपनी रेखा खुद खींच सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। बाकी मुझे कहा दादी जानकी के बारे में कुछ सुनाना, आप में से किसी ने दादी को देखा है? हाँ, काफी है जिन्होंने दादी को देखा है। यहाँ देखा या उड़ीसा में देखा? यहाँ देखा है, उड़ीसा में भी देखा है। दादी, मैं तो यही कहूंगी कि वो इंसान होते हुए भी इंसान से कुछ और थी, क्योंकि जब दादी को 7 साल की हुई तब दादी को कहा गया कि आपको विदेश में जाकर के सेवा करनी है। दादी सोचे कि मैं इंग्लिश तो जानती नहीं हूं, मैं विदेश जाकर के क्या करूंगी, और दादी की तबीयत तो बचपन से ही शरीर का कोई ना कोई खींच पीच चलती रहती थी, और वो तो बिल्कुल ठंडा देश है। लेकिन जब 7 साल की आयु में जब रिटायर्ड होने का टाइम है, तब भगवान ने उसको कहा कि तुम्हें विदेश जाना है। दादी विदेश गई, लंदन में गई। 40 साल के अंदर 137 कंट्री के अंदर सेंटर स्थापन करना, आप सोच सकते हैं। कोई भी बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की ब्रांचेस 40 साल में इतने देशों में कर सकता है? नहीं ना। लेकिन ये परमात्मा कार्य था। शुरू के दिनों में लंदन में जब बोर्ड भी लगा नहीं सकते थे, और दादी को जब कहा कि सेंटर शुरू करना है, कैसे शुरू करेंगे, कोई पहचान तो थी नहीं, आसपास में किसी को जानते भी नहीं थे, तो बोर्ड कैसे लगा, बोर्ड तो लगा ही नहीं सकते थे क्योंकि घर के अंदर सेंटर शुरू किया एक कमरे से। तो उनके पास मेडिटेशन करने का ही बहुत समय था, मेडिटेशन करते थे तो किसी को वाइब्रेशन आती थी कि यहां कुछ है। अनजान घर में दरवाजा खटखटाना भी बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन दरवाजा किसी ने खटखटाया तो दरवाजा खोला, दादी ही होती थी। एक बार इन्होंने कोई प्रोग्राम रखा, और प्रोग्राम रखा तो उसका इंग्लिश में वो पर्चा किसी को मिला, वो व्यक्ति को मिला जो हिप्पी थे, जिसके लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, कोई उनका घर का कोई ठिकाना नहीं होता, हिप्पी लोग। ऐसे दो भाई जब उन्होंने दरवाजा एड्रेस पर आए और खटखटाया तो दादी ने दरवाजा खोला। अभी ऐसे व्यक्ति जब परदेश में अगर आ जाए, हम क्या करेंगे? दादी ने बिल्कुल प्यार से उनका वेलकम किया, और दादी के जो प्यार के वाइब्रेशन उन आत्माओं को मिले, फिर उन्होंने हमारा 7 दिन का कोर्स शुरू हुआ। जयंती दीदी कोर्स कराते थे, और कोर्स कराने के बाद दादी उनको मिलती थी रोज। वो दो भाई दो रीजन को संभालने के निमित्त बने। तो ऐसे व्यक्ति भी आए, शुरुआत में तो ऐसे ही होता है, धीरे धीरे बाबा ने परिवर्तन किया सबको। फिर दादी को ख्याल आता था कि कहां से शुरुआत करें। दादी को इंग्लिश तो आती नहीं थी, और जयंती दीदी भाषण करते थे, दादी बाजू में बैठते थे, तो दादी सोचती थी कि ये बोले, ये वो बोले, ये वो। दादी जैसे वाइब्रेशंस भेजते थे, और उस समय चिंती दीदी को जैसे कैचिंग होती थी और वो भाषण करती थी। तो ऐसे धीरे 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 सेवा आरंभ हुई और वो सेवा कितनी फलीभूत हुई। अभी कुछ दिन पहले दादी जी का दिन था तो जयंती दीदी ने वो अनुभव सुनाया कि दादी को स्वप्न आया था और वो स्वप्न में दादी ने देखा था कि कोई देश है, नाम नहीं पता था दादी को, लेकिन कहते हैं एक बहुत बड़ा घर है और बीच में सीढ़ी है और सीढ़ी के ऊपर एक परिवार खड़ा है जो हमारा इंतजार कर रहा है। वो स्वप्न तो दादी ने सुना दिया इनों को, लेकिन वो परिवार कौन सा है वो पता नहीं। फिर दादी को गयाना से निमंत्रण आया तो दादी ने फिर जयंती बेन को बोला तुम गयाना जाओ। जयंती बेन सोचे कि मैं गयाना किसके पास जाऊं, लेकिन फिर भी दादी ने कहा जाना है तो जयंती बेन गई। और जैसे ही वो किसी के घर में पहुंची, वो ही दादी का जो स्वप्न वाला सीन था उसको दिखाई पड़ा कि सचमुच में इससे ही वो परिवार सीढ़ी के ऊपर खड़ा है और जयंती दीदी का वेलकम कर रहा है। सारा परिवार बाबा का बच्चा बना और जो भाई था वो कैबिनेट मिनिस्टर था और उसकी बच्ची आज न्यूयॉर्क में यूएन में सेवा कर रही है। तो ऐसे ऐसे विजन दादी को दिखाई पड़ते थे कि कहां जाकर के सेवा करनी है। ये कौन करा रहा था? भगवान करा रहा था, भगवान टचिंग दे रहा था। एक बार मैं दादी के साथ में यूएन की कॉन्फ्रेंस थी, यूएन की कॉन्फ्रेंस में मैं दादी के साथ थी और कॉन्फ्रेंस का ये था कि केवल 3 मिनट वो लोग बोलने के लिए देते हैं। यदि आप ट्रांसलेशन कराते हैं तो दादी का मैसेज सिर्फ 1.5 मिनट का ही होता था। तो दादी ने सोचा कि वो 3 मिनट में क्यों ना मैं इंग्लिश में भाषण करूं। तो दादी ने इंग्लिश में भाषण किया। जब हम सोचते हैं कि दादियां कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, दादी बहुत प्राउडली कहती थी कि मैं 3 क्लास पढ़ी हुई हूं और फिर बाद में 10 साल की उम्र में तो वो स्कूल में बैठी क्योंकि भक्ति बहुत, भक्ति के संस्कार दादी में बहुत थे। और 13 साल की उम्र हुई दादी ने छोड़ दिया स्कूल, तो इतना ही पढ़ी। लेकिन ये 3 साल पढ़ने के बाद इन आत्माओं के अंदर इतनी शक्ति आई कहां से? जो यूएन में भाषण करे आप सोच सकते हो, यहां भारत में जब 1-1 लाख का प्रोग्राम चला और दादियां जब भाषण करती थी वो 1 लाख के प्रोग्राम के अंदर, अमेजिंग, सारी सभा बैठी रहती थी। एक बार हम फ्यूचर ऑफ पावर के प्रोग्राम में गए और वो फ्यूचर ऑफ पावर के प्रोग्राम में इतना कोलाहल था क्योंकि प्रोग्राम से पहले उन्हों को रिफ्रेशमेंट देते हैं, कुछ ना कुछ नमकीन मीठा ड्रिंक्स, तो सभी आपस में वीआईपी आपस में मिलते हैं, खा पी रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना आवाज था, बहुत ही आवाज था। लेकिन दादी जी एंटर हुई, हम भी भगवान को याद कर लेते हैं, तो मैं कह रही थी कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। एक इसकी ताकत है कि दादी के एंटर होते ही सब शांत हो गए, एकदम शांत। तो सचमुच में मैंने दादी की वो ताकत को देखा। एक बार बेंगलोर में प्रोग्राम था और हमने सुना है कि बेंगलोर में कभी भी बरसात आ जाती है, तो मार्च महीने में प्रोग्राम था और बरसात शुरू हो गई। सभी लोग छाता लेकर के प्रोग्राम में आए, टेंट सारी गीली हो गई, पानी गिर रहा है, लेकिन लोग आए। बरसात अभी चालू ही थी और दादी ने कहा कि चलो हम चलते हैं प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में जब आए, सभी ने मना किया कि पहले दादी बरसात चालू है, बरसात रुके हम जाएंगे। दादी कहती है नहीं चलो। और जैसे ही हम प्रोग्राम में पहुंचे, अभी तो टेंट के बाहर ही है दादी, और सूरज निकल आया, बरसात रुक गई और सूरज निकल आया। तो ये आत्मा, ये प्रकृति जीत थी कि प्रकृति को भी कैसे उनको प्रकृति भी सहयोग देती थी। बाकी दादी की बीमारी की तो मैं कितनी कहानियां सुनाऊं। हमने बहुत बार दादी को देखा कि कभी भी शरीर छोड़ सकती है, ऐसी ऐसी बीमारियां दादी के पास आई। लेकिन जब भी बीमारी आती थी, दादी एकदम अंडरग्राउंड हो जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी, अपनी बीमारी का कभी वर्णन नहीं करती थी। और कोई दादी को पूछे ना कि दादी आप बीमार हो, दादी को इंसल्ट लगती थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था दादी को कोई कहे बीमार हो। तो दादी जब अंडरग्राउंड हो जाती थी, और दादी की एक हॉबी थी विचार सागर मंथन करना, ज्ञान का चिंतन करना, और ऐसे समय पर दादी ज्ञान का चिंतन करके नई नई बातें लेकर के जब ठीक हो जाती थी तब सुनाती थी। तो हम अपनी बीमारी का वर्णन करते तो बीमारी कम हो जाएंगी या बढ़ेगी? तो दादी ने कभी अपनी बीमारी का वर्णन नहीं किया। डॉक्टर भी पूछते थे। एक बार दादी बहुत सीरियस हो गई और डॉक्टर ने कहा कि दादी आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। दादी कहती मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी, तुमको मेरा इलाज करना है तो यहीं कर। डॉक्टर फिर भी बोल के गया कि यदि ये 48 आवर्स निकाल दिया तो सर्वाइव कर जाएगी, नहीं तो कुछ कह नहीं सकती है। आधी रात को दादी को वापस श्वास फूलने लगा, बहुत ही फास्ट ब्रीदिंग होने लगी। फटाफट मैंने सबको उठाया और कहा, डॉक्टर आया रात को 2:30 बजे। दादी कहती है डॉक्टर पहले मेडिटेशन करो फिर मेडिसिन की बात करो। माना दादी को अच्छा नहीं लगता था कि मेडिसिन की कोई बात करे डायरेक्ट, पहले मेडिटेशन करो। एक बार दादी हॉस्पिटल में थी, डॉक्टरों ने कहा कि दादी 2 दिन और रुक जाओ। दादी कहती नहीं मुझे नहीं रुकना है, मुझे तुम छुट्टी दो, मैं जाना चाहती हूं। डॉक्टर कहे कि नहीं दादी 2 दिन हमें अच्छी तरह से डायग्नोज होने करने दो, आप 2 दिन रुक जाओ। दादी डॉक्टर को कहती है तेरे पास दर्द की दवाई है, तेरे पास दुख की दवाई है, वो दवाई मेरे पास है। आबू में 20,000 लोग आए हुए हैं, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। डॉक्टर भी चुप हो गया कि सच्ची बात है, कहते कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा आप दर्द की दवाई दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे, बेहोश कर देंगे, लेकिन दुख की दवाई क्या आपके पास है? नहीं है ना। तो ये विल पावर दादी के अंदर जबरदस्त था। वो विल पावर से अपने आप को 104 साल तक ले आई, नहीं तो 83 में दादी सीरियस हो गई थी, 91 में दादी सीरियस हो गई थी, 14 में सीरियस हो गई थी, डॉक्टरों ने हमेशा जवाब दे भी दिया होता था। लेकिन बाबा की ताकत, दादी कई बार हमारे जो बुजुर्ग पहले, दादी की उम्र ज्यादा थी और दादियों की भेंट में, तो दादी ये चित्र आप देखना अच्छे से, खड़े रह करके आप उन सब से दृष्टि लेना, तो ये चित्र जब दादी देखती थी तो कहती थी कि ये सब मेरे से छोटे छोटे मुझे छोड़ करके चले गए, पता नहीं भगवान ने मुझे क्यों यहां बिठा के रखा है। लेकिन दादी ने अपनी लाइफ में बहुत सेवा की है। दादी को बहुत रहम आता था जो लोग दुखी होते थे। एक बार मेक्सिको में अर्थक्वेक हुई और वो अर्थक्वेक हुई तो दादी न्यूयॉर्क में थे, तो दादी को लगा कि मुझे मेक्सिको जाना चाहिए। जब दादी मेक्सिको जा रही है तो लोग सोचते हैं कि वहां इतना बड़ा भूकंप आया हुआ है और ये अकेली इंसान जा रही है, और वहां दादी के लिए बहुत बड़ा होर्डिंग्स लगाया हुआ था, द स्टार ऑफ होप इज कमिंग। तो वो सब जगह शहर के अंदर वो होर्डिंग्स लगी हुई थी, तो सभी ने पूछा उसको, इमिग्रेशन में पूछा कि आप क्यों आई है, यहां तो माहौल ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि दुख के टाइम पर यदि मैं मेरे परिवार को मदद नहीं करूं तो किसको मदद करूंगी। तो ये विश्व उसका एक परिवार है, और ऐसे टाइम पर जहां जहां आवश्यकता होती थी दादी जी पहुंच जाते थे। तो दादी के अंदर रहम भावना भी बहुत थी, और दूसरा दादी में दातापन के संस्कार बहुत थे, देना 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 हमेशा। जो आत्माएं आती हैं उसको पहले स्पिरिचुअली एम्पावर करते हैं, ज्ञान की इतनी ऊंची बातें सुना करके उसका सेल्फ एस्टीम राइज कर देते हैं। उसके बाद दादी को लिटरेचर देने का बहुत शौक रहता था, कुछ न कुछ वो छपवा करके, छोटे छोटे मैसेजेस छपवा करके देते थे। और तीसरा कि जो भी आवे उसको कोई न कोई भगवान के घर से यादगार चीज मिले, तो कोई न कोई गिफ्ट देती थी, चाहे वो छोटी बड़ी जो भी गिफ्ट। और चौथा प्रसाद, हमेशा उसको प्रसाद भी अच्छा चाहिए। वो कभी कोई बना करके ले आते थे तो कहती है काम चलाओ, प्रसाद मुझे नहीं चाहिए, बनाओ तो प्यार से बनाओ, अच्छे से बनाओ। एवरी गुरुवार को जब हमारा भंडारे में भोग बनता है, दादी जब तक ठीक थी हमेशा गुरुवार को भंडारे में जरूर जाते थे। दादी की वो भावना रहती थी कि जो इतनी मेहनत करते हैं तो उनको मैं 2 मिनट दृष्टि नहीं दे सकती हूं। तो ऐसे रहम दिली के संस्कार को हो, दातापन के संस्कार को हो, शुभ भावना शुभ कामना के संस्कार भी दादी में बहुत थे। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थी दादी। ओम शांति।